शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी दादी जानकी जी आएंगे 12 बजे, तो आपसे 3 बार कहलवाएंगी दादी, इसीलिए सबको कहना होगा और जोर से कहलवाएंगी दादी इतनी शक्ति से, ताकि सब जागृत रहे। तो पिछले 3 दिनों से आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत सुना है ना, बहुत कुछ देख भी चुके हैं। कल माउंट आबू भी गए, फिर यहाँ आकर के खेलपाल भी किया, और कितने भाई बहनों के द्वारा आपने कितनी सुंदर सुंदर विषयों पर चर्चाएं सुनी, योग अभ्यास भी किया, थोड़ा बहुत जितना आप कर सके। अब इसको आगे बढ़ाना है सेवा केंद्र पर जाकर के। तो अगर हम जीवन में सुख और शांति स्थायी रूप से चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम पहले अपने आप को बदले। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। दूसरे अगर चाहेंगे तो वो उनके ऊपर है, वो बदलना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं चाहते हैं तो हम किसी को जबरदस्ती भी नहीं बदल सकते। आज की ऐसी दुनिया है, छोटे बच्चे को भी जबरदस्ती कुछ काम कहो तो करने को तैयार नहीं होगा। छोटे बच्चे को आपको भोजन खिलाना है, उसको खाना नहीं है, उसको खेलना है, खाना नहीं है। कितना भी उसको पकड़ो, जोर से उसके मुंह में डालो, अब उसको खाना नहीं है तो क्या करेगा, हाँ, तू 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 करके फेंक देगा और आपके हाथ से भाग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में जो है वो ही करना है उसको। इसलिए हम दूसरे पर बहुत जबरदस्ती अपना अधिकार नहीं जमा सकते, पर हमारे हाथ में अपने लिए तो सब कुछ है। तो कैसे जीवन में अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी वो ही देना होगा, उनसे मांगना नहीं होगा, मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, मुझे खुशी दो। परमात्मा से भी मांगने की बात नहीं है। हम अक्सर करके ईश्वर से मांगते हैं, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, प्रार्थना भी गाते, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हम कहते हैं वो तो आपके ऊपर है ना, मन का विश्वास कमजोर न करे। तो शक्ति मांगेंगे या शांति मांगेंगे तो भगवान आपको शांति कैसे देगा, कोई चीज थोड़ी है जो आपके हाथ में देगा। बच्चे ने आपसे कुछ मांगा और आपने उसको दिया, वो तो कोई चीज होती है, पर शांति बच्चा मांगे तो कैसे देंगे आप उसको, शक्ति मांगे तो कैसे देंगे। चलो खुराक अच्छी खिलाएंगे, पर वो तो शरीर की शक्ति है, आत्मा की शक्ति कैसे देंगे। वो शक्ति तब उनको होगी, आपको अनुभव होगी, जब ऐसा चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा का भोजन हमारी सोच है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, सब ने मुझे दुख दिया है और दुखी हूँ, तो दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति आपके पास नहीं आएगी, या भगवान भी नहीं कर सकेगा जो आपको सुख दे, क्योंकि आपने अपने मन में ठान लिया है मैं तो बहुत दुखी हूँ। अगर आप मन में ये ठानेंगे मैं सुखी हूँ, तो कोई आपको दुखी कर नहीं सकता है। अगर आपने अंतर में ये सोचा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी, कोई नहीं कर सकेगी। भले आपका सब कुछ छीन भी लेवे, क्योंकि वस्तुओं में सुख या शांति नहीं है, वो तो आपकी मन की अपनी स्थिति है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे, जो आप मन में लाएंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो जैसे ये मन के लिए है वैसे वचन के लिए भी है, वैसे कर्म के लिए भी है। अब हम किसको गाली देंगे और हम सोचें कि वो हमारे से प्यार से बात करे, वो भी गाली देगा, वो भी बुरा कहेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो प्यार से बात करे तो हमको क्या करना होगा? हमको भी तो प्यार से बात करना होगा, या हमको गुस्से से बात करना होगा? कई बार होता है ना, कोई गुस्सा कर रहा है मान लो, और हम भी उन पर गुस्सा करके क्या कहते हैं, गुस्से से बात क्यों करते हो, धीरे से बात करो ना, गुस्से से बात क्यों करते हो, हम भी तो गुस्से से ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते कि वो गुस्से से बात न करे, धीरे से बात करे, शांति से बात करे, तो पहले ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ ऐसे करें, तब वो करेगा। कर्म में भी ऐसे ही है, हम किसी को दुख देते हैं और हम समझते वो हमको सुख दे, कैसे देगा, हम भी तो दुख दे रहे हैं। तो कई दुनिया में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो किसी को दुख नहीं देते, लेकिन लोग हमको बहुत दुख देते हैं। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि आप दुख न दो और वो आपको दे दे, हो ही नहीं सकता। चलो कर्म से आप उनको दुख नहीं देते होंगे, पर वचन से भी चलो नहीं देते होंगे, मन में तो पता नहीं क्या सोचते होंगे आप उनके बारे में। तो वो जो नकारात्मक सोच मन में चलते हैं तो वो वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो फिर उसी अनुसार उनको भी दुख पहुंच रहा है तो आपको भी दुख पहुंचता है। इसीलिए ये कर्म की गति बड़ी गहन है, इंसान इसको समझ नहीं सकता है। इसीलिए कहावत है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, और साधारण इंसान इस गति को समझ नहीं सकता है। क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि कर्म कब किया, वचन कब कहा, सोचा कब, और वो फल कब मिला, वो तुरंत नहीं होता है। जैसे कई बीज होते हैं जल्दी फल देते हैं, कोई बीज देर से भी फल देते हैं, पर ये जरूर है कि जो आपने किया है वो आपको वापस जरूर मिलेगा। इसको कहते हैं कर्म की गति को समझना। तो कर्म क्या चीज है, पहले हम उसको समझे। कर्म क्या है? ये जो शब्द है कर्म, हम किसको कहते हैं कर्म? जैसे युज शब्द से योग निकला है शब्द, संस्कृत का शब्द है युज, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो कर्म भी वास्तव में संस्कृत शब्द है, और अगर हिंदी में उसका अनुवाद करें तो कर्म का हिंदी या सहज अर्थ होता है कोई भी प्रकार की क्रिया। कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं वो एक कर्म है, देखना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना पीना, ये सब कर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्रिया है, हमने किया। और जब क्रिया होती है तो क्या होता है उसका परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होती है। ये हो नहीं सकता कि क्रिया हो और प्रतिक्रिया न हो। इसीलिए कोई भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, नहीं तो अरसों, नहीं तो साल के बाद, 10 साल के बाद, 10 जन्म के बाद भी। इतने हद तक वो कर्म की शक्ति चलती है, क्योंकि कर्म तो मोटा रूप है ना, हाथों से किया, और वो आत्मा में कर्म रूपी जो हमने क्रिया की वो आत्मा में समा गया, वो संस्कार रूप में उसमें समा जाता है और यही संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाती है, फिर उसको उसका फल मिलता है। इसलिए कब वो कर्म किया, कब फल मिला, ये पता नहीं चलता, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया बिना क्रिया के नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही बैठे हैं, बहुत वर्षों का अभ्यास है, तपस्या है, त्याग है, इसलिए मुझे अधिकार है, मिला है कि यहाँ मैं बैठकर आपके सामने कुछ बोल सकूं। तो इसीलिए कर्म को समझना बहुत फिर भी मुश्किल नहीं है, कोई भी क्रिया, लेकिन अगर कर्म शब्द का व्यापक अर्थ ले, गहराई में सोचे, तो कर्म का व्यापक अर्थ है कार्य और उसका परिणाम, कोई भी क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया, ये दोनों ही कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कई कहते हाय मेरे कर्म, तो कर्म क्यों ऐसे कहते, कर्म को कूटते क्यों हैं, क्योंकि जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है, इसलिए कर्म को कूटते हैं, क्योंकि क्रिया के बाद ही प्रतिक्रिया हुई है। इसीलिए कार्य जो किया और उसका जो परिणाम मिला, ये दोनों कर्म के अंतर्गत आता है। अब कर्म सिद्धांत को हमें समझना होगा, कर्म का सिद्धांत क्या है। वैसे विज्ञान ने, न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होके गए हैं, उनको कहते थे फादर ऑफ साइंस, विज्ञान का वो पितामह था। उसने एक बहुत बड़ी थियोरी दुनिया को दी और वो क्या थी कि हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है। आप ऊपर में गेंद फेंकते हैं, जितनी गति से ऊपर फेंकेंगे उतनी गति से आपको वापस मिलेगा, अगर हल्का फेंकेंगे तो हल्के रूप में वापस आएगा, बहुत शक्ति से फेंकेंगे तो उतनी शक्ति से आपको वापस आएगा। और उसका उदाहरण यहाँ दिया है, वो कई सिद्धांत उसने बताए गति के, और इसमें तीसरा सिद्धांत है कि हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो उसमें दिखाया एक गेंद यहाँ फेंका, चार पांच गेंद है, तो वो जो पहला गेंद जिस शक्ति से दूसरे गेंद को लगा, वो तीसरे चौथे पांचवे तक पहुंच करके वो उतनी शक्ति से बाहर जाएगा, फिर उसी शक्ति से वापस आएगा, ये चलता ही रहेगा सिलसिला जब तक हाथ से उसको रोका न जाए। तो इसीलिए कर्म का सिद्धांत भी ऐसे ही है, आप जिस गति से, जिस शक्ति से क्रिया करेंगे, जिस स्वरूप में करेंगे, जिस प्रकार करेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन इतना सहज भी नहीं है समझना, इसकी और भी गहराई है, क्योंकि कई बार हम क्रिया तो करते लेकिन प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। मिसाल के तौर पर आप एक बिल्कुल खुले मैदान में जाएं, एकदम खुला मैदान जहां कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है, रेत ही रेत है समझो, और वहां जोर से आप आवाज करें, जोर से जितना आवाज कर सकते हो करो, लेकिन आपको जवाब वापस नहीं आएगा, वो हवा में उड़ गया, क्योंकि प्रतिक्रिया के लिए कुछ रुकावट चाहिए, फिर वो वहां से वापस आएगा, कोई रुकावट ही नहीं है, एकदम खुला मैदान है, तो कितना भी चिल्लाएगा चिल्लाएंगे लगेगा ही नहीं कि इतनी कोई आवाज भी आपने की। परंतु वही आप आवाज एक गुंबज में करें, गुंबज जहां चारों ओर बंद है, एक घड़ी की ही आवाज एक दीवार के सहारे पर घड़ी रखें, तो दूसरे कोने में वो घड़ी की आवाज सुनाई देगी, इतनी उसमें ताकत होती है। तो क्या कारण बना, तो और कौन कौन सी बातें उनके साथ जुड़ी हुई है क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में, कई बार हम सोचते हैं मैंने कर्म तो बहुत अच्छा किया, मान लीजिए आपका बच्चा है वो थोड़ी शरारत कर रहा है और आपने सबके सामने उनको कहा कि भाई बेटा ये काम ऐसा ठीक नहीं है, सबके सामने कहा, वो थोड़ा समझदार है, वो भी जानता है मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने किया और आप उसको सबके सामने शिक्षा देना शुरू कर देंगे, या वो थोड़ा अपना उसको अभिमान तो होगा और आप सबके सामने शिक्षा दे देंगे तो वो उसको बुरा लगेगा, वो कहेगा कि माँ पिताजी अगर मुझे शिक्षा देनी थी तो सबके सामने क्यों दिया, मेरा मेरा मेरी इंसल्ट हो गई, यहाँ तक बोल देते, मुझे अकेले में कहते थे, धीरे से कहते थे, सबके सामने इतना जोर से आपने कह दिया तो मेरा तो अपमान हो गया। तो बात तो सही है, थोड़ा आपको भी धीरज रखना पड़ेगा कि उसको समझाएं, पर बाद में समझाएं, उसी समय वो स्थान वो समय उपयुक्त नहीं है और हो सकता उसकी उस समय वो मानसिक स्थिति भी कोई ऐसी नहीं थी जो आप उसको समझाते और वो समझ लेता, तो थोड़ा आपको भी धीरज रखना पड़ता। परंतु मान लीजिए अधीर्य हम हो गए और हम कहेंगे मैंने तो उसको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन हमारे लिए भी वो गलत था क्योंकि समय स्थान परिस्थिति ठीक नहीं थी, भले कर्म अच्छा था। तो कर्म के साथ साथ हमारी वृत्ति, हमारी भावना, वो स्थान, वो समय, वो घड़ी, वो उसकी दशा, ये मानो ये सारी जो बातें ना वो भी बहुत इसके साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इतना सहज नहीं है कर्म की गति को समझना। एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो वो तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है क्योंकि हमको कोई अधिकार नहीं है किसी का जीवन हम ले, एक माँ को भी अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे का जीवन ले, ऐसे नहीं कि हमने जन्म दिया तो हम इनको मार सकते हैं, नहीं कर सकते, ये अधिकार नहीं दिया है। लेकिन एक व्यक्ति जो सिपाही है, बॉर्डर पर है और सामने आतंकवादी आए हैं, उनको बंदूक दी गई है देश की रक्षा की के लिए, और उस समय अगर वो बंदूक न चलाए और ये कहे कि नहीं हत्या करना पाप है, तो क्या कहेंगे उसको, हा? वहां पर न हत्या करना या न गोली चलाना ये ज्यादा पाप बन जाएगा, क्योंकि रक्षक 120 करोड़ भारत की जनसंख्या, उसकी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि दुश्मन वार न करे, और ये समझ कर कि नहीं हत्या करना पाप है, वहां न करना ये ज्यादा पाप हो जाएगा क्योंकि रक्षक भक्षक बन जाएगा, तो स्थान अलग है। और अगर सचमुच उसने अनेक आतंकवादियों को मार गिराया तो उसको कितने बड़े इनाम मिलते हैं, वीर चक्र, परम वीर चक्र, राष्ट्रपति इनाम देता है, कितना उनका सम्मान होता है। तो कर्म क्या किया, हत्या की ना, यही किया ना, मारा, और वैसे कोई मारे तो फांसी मिलेगी। तो देखिए परिणाम अंतर, परंतु स्थान समय परिस्थिति सब अलग हो जाता है। अब मान लीजिए हम देख रहे हैं, देखना कोई पाप नहीं है, समझो आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको कहूँ आप मुझे क्यों देख रहे हो, आप कहेंगे बहन जी माफ करना, कोई पाप तो नहीं कि आंखें भगवान ने दी है तो हम तो पाप तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, देखना पाप बन सकता है। कैसे बन सकता है? जब हमारी वृत्ति अंतर की अच्छी नहीं है, भावना अच्छी नहीं है, हमारे अंतर में जो विचार है वो अच्छे नहीं है, भले आंखें तो वही है, इसीलिए वहाँ ट्रकों के पीछे आप लोग पढ़ते होंगे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, पढ़ते ना, तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो नजर बुरी कैसे बनती है, आंखें तो वही है, किसी की नजर इतनी अच्छी होती है, गुरु की नजर हमारे ऊपर पड़ी तो हम क्या कहते गुरु के लिए कि गुरु ने तो मुझे निहाल कर दिया, कैसे निहाल किया, उनकी नजर हम पर पड़ी, तो किसकी नजर पड़ी तो हम निहाल हो गए और किसकी नजर पड़ी तो हम बेहाल हो गए, हैं क्या कहेंगे, आंखें तो वही है, लेकिन अंतर क्या पड़ गया, अंतर की वृत्ति का, दृष्टि का। तो कर्म और फल की क्या क्या सिद्धांत है वो बातें तो बहुत गहरी है, लेकिन साधारण रूप से कर्म शब्द का जो मूल अर्थ है कि जो हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है, ये कभी ना भूलें। जो हम दूसरों को देंगे वो हमारे पास लौट कर आएगा, इसीलिए अगर वही लौट कर आना है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको वही करना चाहिए जो हम दूसरों से चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर दूसरों से सुख चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, दुख देना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा। अगर हम किसी से सम्मान चाहते हैं तो हमको सम्मान देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि हम उसका अपमान करें और हम चाहें कि वो हमको सम्मान दे, कैसे होगा। इसीलिए ये कभी ना भूले कि हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, और जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये हो नहीं सकता कि हम आम का बीज बोएं और अनार का पेड़ की अपेक्षा करें, अनार निकले उस पेड़ से, हमने तो आम का बीज डाला है, तो आम डाला है तो आम ही निकलेंगे। तो कर्म भी एक बीज की तरह है और उस बीज का वैसा ही फल मिलेगा जैसा हमने कर्म रूपी बीज बोया। तो कर्म से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हम दूसरों से वही व्यवहार करें जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। कई बार क्या होता है, ये तो देखो ऐसी है, ये ऐसी है, लेकिन हमने कभी सोचा मैं उनके साथ कैसे व्यवहार करती हूँ। कई बार कहेंगे मेरे को तो इसका इतना सहन करना पड़ता है, बात मत पूछो, इतना सहन करना पड़ता है। लेकिन कभी उससे पूछा, वो भी तो ऐसे ही कहती होगी मुझे इनसे कितना सहन करना पड़ता है इनका, तो हम उनका सहन कर रहे, वो हमारा भी सहन कर रही है, क्योंकि हमारे संस्कार उनके संस्कार से मिलते नहीं है, तो हमारे भी संस्कार उसको पसंद नहीं है, तो वो सहन तो कर रही है ना, हमको पसंद नहीं है तो हम उनका सहन कर रहे हैं। लेकिन समझदारी क्या होगी कि वो उसके कैसे भी संस्कार हो, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें अच्छा, तो वो भी अच्छा करेगी, भले वो मेरे भी तो अच्छे संस्कार इतने कहाँ होंगे। इसीलिए ये कभी ना भूले, ये शिक्षा जरूर साथ में लेनी चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को कहने का कि ये मुझे दुख दे रहा है जब मैं भी दुख दे रही हूँ उसको। तो इसीलिए जब इस शिक्षा को हम समझ लेते हैं तो अंदर में क्या महसूस करते हैं कि हमारे कर्म ही कारण है जो सही समय पर कर्म फल के रूप में सामने आते हैं। भले उस समय नहीं आएंगे लेकिन समय पर आएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम तो भूल गए होंगे कि हमने भी कुछ ऐसा कर्म किया है, ऐसे ही तो नहीं फल आया। तो इसीलिए हम किसी और को दोष देने की बजाय किसको दोष दें, अपने आप को। लेकिन अपने आप को भी दोष देने की बजाय अपने आप को बदल दे, सबसे सहज काम। और हम क्या सोचते हैं, दूसरा बदले, हम ना बदले। कोई समस्या आ गई वो समस्या का कारण ढूंढते रहेंगे, परंतु सहज उपाय क्या है, अपने आप को बदल दो। कोई पहाड़ है, हवाई जहाज क्या करता है, पहाड़ को तोड़ने थोड़ी बैठता है उसके थ्रू पास होने लिए, बस उसके ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़, वो भी छोटे दिखाई देते हैं, छोटे दिखने लगते हैं क्योंकि वो उनसे ऊपर चला गया। एक पंछी क्या करता है, सामने देखता है कोई रुकावट आती है तो उड़ जाता है। एक कछुआ क्या करता है, देखता है कोई सामने विघ्न आता है तो अपने अंगों को अंदर ले लेता है, लड़ने थोड़ी बैठता है। क्योंकि उसमें हमारा ही श्वास, संकल्प, शक्ति, समय, जो जीवन के बहुत बड़े खजाने हैं, वो संपत्ति तो खजाना है ही है, लेकिन हमारा समय, हमारे अंदर के विचार, संकल्प, श्वास और समय, श्वास, संकल्प और शक्ति, ये चारों बहुत बड़े खजाने हैं। ये एक बार गए ना, फिर वापस नहीं लौट के आते हैं। तो इसीलिए हमारा फर्ज क्या है कि हम वही करें जो हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। ये हर एक अपने लिए अगर सोच ले तो कर्म की गति उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर इसको और अगर समझना चाहते हैं तो कर्म सिद्धांत में तीन बातें आती है। एक तो जैसा बीज वैसा फल, ये तो है ही है, परंतु जैसा बीज वैसा फल वो तो ठीक है, पर जितना बीज उतना फल ये नहीं है। बीज तो हम एक बोते हैं और फल कितने निकलते हैं, एक बीज डालते हैं और हजारों फल ले लेते हैं, हर साल फल निकलते हैं। कई ऐसे बीज होते हैं एक बार हमने डाला और बहुत सालों के बाद फल निकलना शुरू होता है, लेकिन हर साल देते रहते हैं, कई तो सारा साल भी देते रहते हैं, बीज तो एक ही बार डाला था। इसीलिए बीज एक और फल अनेक। तीसरा सिद्धांत है कि बीज एक है भले, लेकिन समय बोने का अलग और फल पाने का अलग। तुरंत तो फल नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है धीरज का फल मीठा होता है। जो पेड़ पर जितना पके, देर से पके सो मीठा होए। भले देर से पके पेड़ पर, लेकिन वो फल मीठा होगा, लाभदायक होगा। कच्चा तोड़ दिया और फिर खाने की कोशिश की, वो तो कड़वा होगा, वो तो सख्त होगा। या उसको जबरदस्ती कोई दवाइयों से पकाया तो वो तो फायदे के बदले नुकसान ही करेगा। इसीलिए बीज बोने और फल पाने का समय अलग है। तुरंत फल की इच्छा भी कभी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मैंने इसके लिए इतना किया, लेकिन इसने मेरे लिए क्या किया, ये तो ऐसे हुआ जैसे तुरंत फल की इच्छा रखी। चलो हमने किया, नेकी कर दरिया में डाल। पहले जमाने में नेकी बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए कहते थे दरिया चाहिए नेकी को दरिया में डालने के लिए, यानी उसको भूल जाओ, नेकी करके भूल जाओ। अच्छा काम किया उसके फल की चिंता मत करो। गीता में भी आता है कर्मणे वादी का रस्ते मां फलेशु कदाचनम। कर्म पर आपका पूर्ण अधिकार है, पर फल ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि मिलेगा जरूर, परंतु इच्छा तुरंत रख के मत कर्म करो कि ये फल मुझे मिले तभी मैं ये करूंगा। तो नेकी कर दरिया में डाल। नेकी के लिए दूसरी कहावत है नेकी और पूछ पूछ। कई लोग अच्छा काम करना चाहते लेकिन 10 लोगों से पूछेंगे, ये करूं, ये करूं, ये करूं। तो नेक काम करने लिए पूछना थोड़ी होता है, पूछना होता है, क्योंकि जितने लोगों से पूछेंगे सब अपनी अपनी बात सुनाएंगे, तो आपका काम तो वहीं रह जाएगा। और उसको पोस्टपोन करते रहेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल तो आएगा नहीं। काल जरूर आ जाएगा परंतु कल नहीं आएगा। तो इसीलिए अच्छा कर्म अगर किया तो ज्यादा सोचो नहीं, अपनी महिमा भी करने की जरूरत नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्योंकि जितना अपना वर्णन करते जाएंगे, अभिमान जताते जाएंगे, उतना वो फल कम होता जाएगा, क्योंकि तुरंत फल खा लिया, अपनी महिमा की और दूसरे ने आपकी महिमा ली या की तो आपको फल मिल गया, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े लोग जो होते हैं ना, अपनी महिमा कभी नहीं करते, दूसरे करते वो बात और है, पर खुद अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते। नेकी कर दरिया में डाला, आप वो कहेगा नहीं 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 कुछ नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में महान विचार है। और जो छोटा मोटा कुछ व्यक्ति कुछ भी करेगा बढ़ाई ज्यादा करेगा, काम इतना और नाम इतना चाहता है। लेकिन अगर कोई गलत काम किया तो कभी भी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि फल तो मिलेगा, और जितना छिपाते रहेंगे उतना वो कर्म आदत बनती जाएगी, संस्कार बनता जाएगा, और वो जब बड़ा रूप ले लेगा फिर तो छिपाने का तो प्रश्न ही नहीं है, तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए छोटी सी भी भूल की सच बता दो, माफी मांग लो, और फिर अपने अंदर में परिवर्तन कर लो, तो देखो वो सजा नहीं बनेगी क्योंकि माफी मांग ली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा काम कोई करते हैं तो बहुत बढ़ाई करते हैं, मैंने किया, और कोई गलत काम बुरा किया किसी को बताना नहीं हाँ, या इतना छिपाएंगे अपने अंदर, और होना चाहिए उल्टा, बड़ा अच्छा काम किया तो कुछ नहीं बताओ, जरूरत नहीं, और गलत किया तो बता के माफी ले लो, क्योंकि ये बढ़ना नहीं चाहिए, और बदल जाओ। बदला मत लो, हम लोगों का यह नारा है, किसी से बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। बदला लेना क्या होता है, हम समझते हैं हम उसके कर्म का फल देंगे, हम कौन होते हैं देने वाले, वो तो ईश्वर है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं बीज और फल को समझ करके कर्म करो। आम का बीज बोएंगे आम ही मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। अब याद करो अपने जीवन में मैंने कितनों को दुख दिया होगा, अवश्य उनसे दुख मिला होगा क्योंकि हमने दिया है, और जिन्हों को सुख दिया है उनसे सुख मिला है। लेकिन कई बार इसके विपरीत भी होता है, कैसे, हमने किसको बहुत सुख दिया पर वो हमको दुख दे रहा है, अब उस समय मुझे क्या सोचना चाहिए, वो दुख दे रहा है। अब दो बातें हैं हमारे आगे, अगर हम ये सोचेंगे कि मैंने इतना सुख दिया वो हमको इतना दुख दिया, ये तो न्याय नहीं है, ऐसा सोचेंगे तो दुखी हो जाएंगे। उसकी बजाय हम ये सोचें कि चलो वो दुख देने की कोशिश कर रहा है पर मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई दुख दे नहीं सकता है, ये तो मन की स्थिति है ना, आप उसको कैसे लेते हो, कैसे सोचते हो उसके बारे में। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है जाने दो ना, क्या कहाँ हुआ कहाँ लगा, एक पागल आदमी गालियां बकता है रोड पर शराब पिया हुआ है या जो कुछ, तो आप उसको क्या मारने जाएंगे क्या, हा? लड़ेंगे उनके साथ क्या, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हा? क्या करेंगे जी, दया आएगी, बेचारा ये अपने होश में नहीं है तो दया आएगी, पर दूसरा किसी ने कहा तो लड़ना चालू करेंगे, तो अंतर क्या पड़ गया, सोच का ना, बाकी तो और तो कुछ नहीं है। तो अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन ये लाएंगे कि चलो कोई पुराना हिसाब किताब होगा चुप तू हो गया, कोई जन्म का हिसाब किताब होगा चुप तू हो गया, ये अगर सोच लिया तो उसका दुख हम लेंगे नहीं, या ये सोचेंगे कि ये संसार तो एक नाटक है, ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, तो पार्ट बजा रहे इस समय इसका यही पार्ट है, चलो बजाया खत्म पूरा हो गया, वो बात भी पूरी हो गई, कहते रात गई बात गई, हाँ, बात खत्म, अगले दिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। लेकिन हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पिछले दिन का हिसाब अगले दिन ले लेते हैं, फिर वही सुबह से वही बात चलती है, रात को वही सोच करके सोते हैं, फिर सवेरे वही संकल्प सबसे पहले आता है, ईश्वर का नाम तो भूल ही गया। इसीलिए दुख न लेना ये हमारे हाथ में है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, एक बात तो ये। दूसरी बात है कि होगा कोई ऐसा संचित कर्म जो रिटर्न दे रहा है, ठीक है ये मेरा कर्जा था वो चुप तो हो गया। और तीसरी बहुत बड़ी बात है, उनसे भी ऊंची बात है, कि अगर कोई दुख दे रहा है कोशिश कर रहा है, ये उसका अपना कर्म है। अगर मैंने उसको दुख नहीं दिया पर फिर भी वो दे रहा है, तो उसका कोई अपना हिसाब किताब है ना। जैसे कई बार होता है किसी के अंदर में अनुमान, वहम, शक बहुत होता है, छोटी छोटी बात में शक करेंगे, वहम करेंगे, अनुमान लगाएंगे, बात कुछ नहीं है पर अनुमान से इतनी छोटी बात को बड़ा कर देंगे, शक करते रहेंगे और अपने आप को दुखी करते रहेंगे। तो ये उसकी समस्या है, अनुमान लगाना, वहम करना, शक करना, सोचते ही रहना, ये वो अपने आप को दुखी कर रहा है उसके कर्म अनुसार। इसीलिए हमको उसका दुख लेना नहीं है। हमारे अगर हमारी नियत साफ है तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपने आप को ही देखना, मेरी नियत तो ठीक है ना। इसीलिए दुख दोगे तो दुख मिलेगा, ये एक अटल सत्य है। और दूसरा, बीज एक फल अनेक, क्योंकि कर्म के अंदर भी कितनी शक्ति से वो कर्म किया, भावना, वृत्ति, दृष्टि, ये सब बातें उसके साथ जुड़ी। कैसे जुड़ी? हमने केवल देखा नहीं पर बुरी दृष्टि से देखा, बुरी भावना से देखा, वृत्ति भी मेरी अच्छी नहीं थी, उसके साथ बुरा व्यवहार करने का भी मन में आया, फिर उसके प्रति एक नफरत की भावना भी आई, बहुत कुछ अंदर ही अंदर मन में चला। तो वो कर्म कोई छोटा कर्म थोड़ी होगा, वो तो बहुत बड़ा रूप ले लेगा। कई बार हम भूल से किसी के पांव, माना पांव लगा तो सॉरी सॉरी कह दिया, बस हो गई बात, पर कोई जानबूझ करके करे तो वो तो पाप कर्म बन ही गया ना। इसलिए कर्म में भी वैरायटी होती है, परंतु यानी किस कैसे प्रसंग में किया। जैसे हम एक अंगुली उठाते हैं, अंगुली उठाई और हवा में लकीर खींची, ये भी एक कर्म तो किया हवा में लकीर खींचने का, अपनी अंगुली से ही सही। तो वो लकीर खींची लेकिन दिखाई नहीं दी, क्योंकि हवा तो दिखाई नहीं देती, तो खत्म भी हो गई, बात पूरी हो गई। लेकिन हमने ये अंगुली उठा करके पानी पर लकीर खींची तो एक घड़ी के लिए वो लकीर दिखाई देगी पानी पर खींची, फिर मिट जाएगी। पर फिर हमने ये अंगुली उठा करके एक रेत पड़ी है, रेत पर हमने खींची तो वो थोड़ा ज्यादा समय टिकेगी, फिर पांव लगा या हवा का झोंका या मिट जाएगी। तो हवा में, रेत, पानी में, रेत में तो फर्क तो पड़ा ना, भले कर्म वही है। और उसके आगे फिर एक नोकीली चीज लेके पत्थर पर खींची लकीर, तो वो तो सालों साल वो लकीर चलती रहेगी। इसलिए कहते पत्थर पर लकीर, वो मिटने वाली नहीं है। तो कई ऐसे कर्म हैं जो फल जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं, तो उस जन्म का भले वो कर्म न हो। इसीलिए कहा गया है कर्म की गति बड़ी बलवान है, किया एक कर्म उसका फल लगातार मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। इसीलिए हर वक्त हमें सावधान रहना पड़ेगा, हम सोचते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हम करते क्या हैं। इसीलिए याद रखें हमारे कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और अगर मिलेगा जरूर तो क्यों नहीं हम अपने कर्म की सच्चाई बता दे, फल तो मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में नहीं तो धर्मराज के सामने तो मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ, देर जरूर है क्योंकि तुरंत तो नहीं होता ना, हर चीज अपना समय तो लेती है, पर अंधेर नहीं है कि होगा ही नहीं। इसीलिए कर्मों पर हमें ध्यान देना होगा। तो कैसे देंगे कर्मों पर ध्यान? बीज और फल, इनके बीच का बहुत बड़ा अंतराल है। कैसा अंतराल है? पहले तो जो हम बीज डालते हैं ऐसे ही बीज नहीं डालना होता है। पहले क्या करना होता है? हल चलाना होता है, धरती को उपजाऊ बनाना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, कितनी मेहनत होती है। किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है धरती में बीज डालने से भी पहले। फिर समय भी अनुकूल चाहिए, प्रतिकूल समय होगा तो बीज कैसे काम करेगा। धरनी भी ठीक चाहिए, सब कुछ उसके अनुकूल हो, और फिर बीज डाला। फिर बीज को सींचना भी पड़ता है, ऐसे ही बीज डाल दिए और सींचा नहीं तो भी फलीभूत नहीं होगा। फिर उसके बाद उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं एक बार हमने अच्छा संकल्प कर लिया फिर दूसरी बार फिर बुरा किया, हमने कहा पहले तो अच्छा किया था ना, नहीं, उस अच्छे संकल्प की रक्षा करनी होगी, उसको सींचना पड़ेगा, बार बार उसी सोच को लाना पड़ेगा। और अगर कोई गलत बीज है, गलत सोच है, एक सेकेंड में उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो विस्तार होकर के बड़ा रूप ले लेगा तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा। इसीलिए नए पत्तों की रक्षा भी करनी होगी, फिर फल पकने देना होगा, तुरंत फल की इच्छा भी मत करो, और जो फल आपको जब मिले तो केवल खुद नहीं खाएंगे, सबको खिलाएंगे भी। अब इसको हम थोड़ा दूसरे रूप में समझेंगे कि ये जो मेरा वर्तमान जीवन है ये भी किसी कर्म का परिणाम है। बताए ना, ऐसे तो नहीं हम बैठे, जरूर जीवन में हमने उस प्रकार के किए हैं अच्छे कर्म, उसका ये फल है हमें। लेकिन अभी जो हमें प्राप्त है, अगर इसके बाद जो मिला है वो हम औरों को नहीं देते हैं तो हमारा भी सड़ जाएगा। जैसे फल तो पका और हाथ में आया लेकिन न खाया न खिलाया तो क्या होगा, सड़ जाएगा, सूख जाएगा। मानो मेरा तन अभी तंदुरुस्त है, इस उम्र में भी तन तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, जरूर मैंने अपने तन पर ध्यान दिया है, अपने भोजन पर ध्यान दिया है, वातावरण पर ध्यान दिया है, एक्सरसाइज ये सब करते हैं तो इस समय इस उम्र में भी स्वस्थ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस उम्र में अगर स्वस्थ हैं पर अभी इस तन से मैंने सेवा नहीं की, दूसरों की सेवा नहीं की, तो पुण्य कहाँ कमाएंगे। तो ये जो किया मैंने वो तो पा रही हूँ, पर आगे भी पाना है तो इस तंदुरुस्त तन से मुझे सेवा करनी होगी। तो फल खाओ भी और खिलाओ भी, इसको कहते हैं सेवा करना माना फल खिलाना भी दूसरों को। अगर मेरा मन भी स्वस्थ है, मेरी बुद्धि अच्छी है और मेरे अंदर ये ज्ञान है तो मेरा फर्ज बनता है मैं दूसरों को भी ये जरूर बांटूं। अगर मैं अपने तक ही रखूंगी तो मेरा भी अंदर सड़ जाएगा। खुद भी जीवन में लाना है और दूसरों के आगे भी प्रेरणादायक बनना है। तो जो मेरे पास प्राप्ति है वो बांटो भी तो आपका बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, वो आपके अंदर में शांति है तो दूसरों को भी शांति बांटो। कैसे बांटेंगे, मन से, वचन से, कर्म से। ये सूक्ष्म चीजें तो सूक्ष्म रूप से ही आप बांटेंगे, अच्छे व्यवहार से, अच्छे बोल से, अच्छी सोच से। तो इसीलिए फिर जो मिले वो दूसरों को खिलाओगे तो हमारा भाग्य और बढ़ता जाएगा। तो भाग्य बनाने का जो कलम है वो हमारे हाथ में है। भाग्य को कोसो मत, हाय मेरा भाग्य, हाय मेरा कर्म, क्योंकि शुरुआत है हमारी विचार। जैसे विचार होंगे वैसी वृत्ति बनेगी, वातावरण बनाएंगे हम वृत्ति द्वारा, वैसे ही हमारी अंदर की भावनाएं होगी, वैसे ही हमारी वाणी होगी, वैसे ही हमारे कर्म होंगे, फिर वही कर्म हमारी आदत बनाएंगे और वही आदत हमारा व्यक्तित्व बनाएगी और वही व्यक्तित्व हमारा भाग्य निर्धारित करेंगे। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अपने विचारों पर ध्यान दो, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि एक दिन वही आपके शब्द बन जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं ना वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो बिना सोचे बोलते हैं, ऐसे हो सकता है? हो सकता है ऐसे बिना सोचे बोलना, और जो सोच रहे हैं वो कभी बोलते नहीं है, ऐसे हो सकता है? कभी हो सकता है क्या? हाँ, जो अंदर में सोच है वही बोल निकलेंगे ना। हम चाहे कितना भी छिपाएं, बोल कुछ और मन में कुछ और। मन में या तो आता है कि ये तो मर जाए, और बोल में आएगा नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, जीते रहो। हाँ, लेकिन जीते रहो उस समय तो कह दिया है, पर अंदर मन में आए कि मर जाए, एक दिन निकल आएगा मुख से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कहेंगे मैंने तो नहीं बोला, पर मन में था तभी तो निकल आया ना, अगर मन में ना होता तो निकला कैसे? कितना भी आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके मुख से कुछ भी बोलो और मन में कुछ और है। तो इसीलिए जिसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो अंदर में वो मुख पर वो ही कर्म में। इसीलिए अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके कर्म बन जाएंगे। अगर आपको कोई कर्म नहीं करना है वो, तो वो बोलो भी नहीं, वो सोचो भी नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो वो निकलेगा मुख से, वही कर्म होंगे। और अगर आप कोई आदत नहीं बनानी है तो वो कर्म भी मत करो। कई कहते हैं मैं तो एक बार केवल सिगरेट पिया, बस एक ही बार तो पिया मैंने, क्या बुरा किया? पर जिस व्यक्ति ने आपको एक ही बार देखा होगा सिगरेट पीते, तो वो क्या सोचेगा? हाँ, ये तो सिगरेट पीता है। एक ही बार शराब आपने पी, तो वो तो यही कहेगा ना कि ये तो शराब पीता है, मैंने देखा है इसको पीते हुए। तो अगर कोई आदत आपको नहीं बनानी है तो एक बार भी कर्म क्यों, जरूरत ही नहीं है। और अपनी आदतों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। व्यक्तित्व आपका वैसा ही बनेगा। आप समाज में अपना कैसा नाम चाहते हो? बड़ा आश्चर्य लगता है, कई लोग ऐसे हैं, पहले जमाने में कहा जाता था, कहते थे भाई मैं तो बाल बच्चों वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इज्जत से समाज में रहना है, इसलिए मुझे ईमानदारी से चलना है। ये कहावत ये कहते थे, बाल बच्चे वाला हूँ, मुझे समाज में इज्जत के साथ रहना है, इसलिए मुझे ईमानदार होना चाहिए। और आजकल उल्टा है, मैं बाल बच्चों वाला हूँ, समाज में मुझे रहना है, अगर मैं ईमानदार रहूंगा तो काम कैसे चलेगा? है ऐसा कि नहीं है? है ऐसा? फर्क हो गया ना। ईमानदारी से लोग लजा करते हैं, और बेईमान होने में शोर करते हैं, मैं तो जो करता हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ, और है बेईमानी। ईमानदारी बुरी मानते हैं, कितना अंतर पड़ गया है। तो हम कैसा व्यक्तित्व चाहते हैं अपना, क्या इमेज हम समाज में अपना दिखाना चाहते हैं? क्योंकि जैसा व्यक्तित्व होगा केवल उस समय की बात नहीं है, वही आपका भाग्य निर्धारित करेगा, क्योंकि रिपीटेड वही कर्म होगा। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है कि धन गया कुछ नहीं गया, धन तो हाथों की मैल है, क्या बड़ी बात है, धन जाएगा फिर आएगा। अगर दिवाला भी मारा कोई बात नहीं, जीवन ज्यादा प्यारा है, ज्यादा कीमती है, धन तो फिर आ सकता है। कई तो दिवाला मारा बस हार्ट फेल हो जाते, जीना ही नहीं चाहते, थोड़ी परीक्षा में कम मार्क्स मिले तो जाके सुसाइड करते। यानी जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है क्या? मार्क्स नहीं आए क्या बड़ी बात है? माँ बाप क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, अरे कुछ भी कहने दो, इसमें क्या जीवन प्यारा है या वो मार्क्स प्यारी है? मर गए तो मार्क्स कौन से काम आएंगे? आज मान लीजिए हम बड़ा सर्टिफिकेट लेके जा रहे, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गए, वो सर्टिफिकेट किस काम का, किस काम का हुआ? जीवन उनसे पूछा है। इसीलिए कहा गया धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया। मानो कोई बीमारी आई, कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो शरीर पर दाग लगता है, कोई बात नहीं, दाग लगा क्या है बड़ी बात, शरीर तो है तो पंच तत्वों की चीज, जीवन जान बची लाखों पाए। पर अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। जीवन से भी ऊंची चीज है हमारा चरित्र। क्यों चरित्र और भी ऊंचा है जीवन से भी? क्योंकि वो आत्मा पर दाग लग जाता है और वो दाग आत्मा के साथ अगले जन्म में जाएगा। शरीर का दाग तो इस शरीर के साथ मिट जाएगा, अगले जन्म में वो दाग वाला शरीर नहीं मिलेगा, पर चरित्र गया तो आत्मा पर दाग लगा और वो दाग आत्मा के साथ गया। तो इसलिए हम एक और लाइन जोड़ देते उसमें, चरित्र गया, सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई रिश्वत खाता है, रिश्वत खाते हैं, अब पहले छिप छिप करके करेगा, पर आदत बनती गई लेने की, रिश्वत छिप छिप करने के बाद फिर खुले में लेंगे करेंगे, एक दिन पकड़े गए, सस्पेंड हो गए और इतना कुछ कर लिया, मान लो उसको जेल में जाना पड़ा। अब जेल में गया तो जेल में अभी शराबी भी बन गया था, सब कुछ सारी सारी बुरी आदतें आ गई थी और वो बुरी आदतों के कारण जेल में भी वो आदतें थी उसकी, और मान लीजिए जेल में उसकी मृत्यु हो गई, वो आदतों के साथ ही था और मृत्यु हो गई। अब आप थोड़ा सोचिए वो आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कोई अच्छा जन्म मिलेगा क्या? क्या सोचते हैं, मिलेगा ना? अगले जन्म में वही जन्म लेगी जहाँ ये सब आदतें उनके परिवार में है, तो आगे उनको क्या उत्थान होगा? कुछ नहीं। जब तक कोई ऐसा संत पुरुष, कोई उनको ऐसा ज्ञानी पुरुष न मिले जो उनको रास्ता दिखाए और उसके उनको सन्मार्ग पर चलाए, तब तक तो उसका पता नहीं है। इसीलिए हम अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं, कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य बनाते हैं। और तो कैसा हम भाग्य चाहते हैं, हम अपने भाग्य के लिए दूसरे को जिम्मेदार न बनाएं, हमारे कर्मों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसीलिए कर्मों का फल भोगने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, वो कुछ भी करे, दूसरे का मत सोचो, उसने ऐसे किया ना इसलिए मैंने ऐसे किया, उसने मुझे थप्पड़ मारी ना इसीलिए मैंने उसको गोली मारी। अरे थप्पड़ तो मारी, आपने गोली क्यों मारी? थप्पड़ ही तो मारी केवल, क्या बड़ी, कौन सा ऐसा बुरा किया? किसने मुझे गाली दी, मैंने उसको थप्पड़ मारी। अब गाली दी, गाली लगी कहाँ? लगी क्या कहीं? कहाँ लगी गाली? चलो गाली दी भी, लगी कहाँ? कहेंगे मन में लगी ना। हम कहते मन में गई कैसे, कौन से दरवाजे से गई? अब यहाँ तूफान आंधी आ रहा, अब तब तूफान आंधी को रोक सकते हो क्या कि ये तूफान आंधी मत आओ? आप उसको तो नहीं रोक सकते, आप क्या करेंगे हैं? अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करेंगे और क्या करेंगे? जो आपके पास ताकत है उतनी, उसको रोकने की तो ताकत नहीं है ना। अब उसने गाली दी तो हमारे पास ताकत इतनी है कि हम अपने कान बंद कर दे बस। तो कोई कहे पर मन में गया ना, मन में गया कैसे, कान क्यों नहीं बंद कर दिए? तो इसीलिए हम, इसलिए कर्मों का फल भोगने की हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने किया, अभी दूसरे ने क्या किया वो उसके कर्म, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको समझ दे सकते परंतु वो समझ भी वो तब देवे जब वो समझने के लिए तैयार हो, और समय अगर अनुकूल न हो तो वो समझ भी बेकार जाएगी। अभी गुस्से में है रहा, मैं उसको समझ दे रही हूँ, समझेगा? नहीं समझेगा। उस समय हमारा शांत रहना ठीक है, क्योंकि अगर मैं समझ भी दूंगी वो भी समझने वाला नहीं है। फिर जब थोड़ा ठंडा हो उसके बाद हम उसको समझ दे सकते हैं, परंतु दोष धर करके नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी युक्ति होनी चाहिए कि कैसे दे, ये फिर अलग सब्जेक्ट है। परंतु कई कहते हैं बस ये कर्म वर्म के चक्कर में हमको जाना ही नहीं, हमको तो इस संसार में जीना ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? आत्मा के अंदर कर्म करने की क्षमता है, कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, कर्म ही हमारी सच्ची पूंजी है जो हमारे साथ चलेगी, अन्य कोई पूंजी हमारे साथ चलने वाली नहीं है। इसीलिए कर्म के फल से भी कोई बच नहीं सकता और कर्म से भी कोई बच नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जी? हाँ, तो कर्म से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेंगे? कर्म से भय नहीं रखना है, डरना नहीं है। अगर कोई गलती की भी ना, कोई गलत काम किया भी, तो हम डरते हैं, किसको पता न चले, सजा न मिले, आदि आदि। लेकिन कर्म से भय क्यों क्यों लगता है? क्योंकि पता है कि हमको परिणाम उसका मिलने वाला है, कभी भी मिलेगा जरूर, तो भय करते हैं। तो कर्म फल वो अच्छा या बुरा परिणाम है जो आपके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर प्राप्त हुआ है। न्याय आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। लेकिन भय करने की बजाय प्रेम करो। कैसे करेंगे कर्म से प्रेम? प्रेम करने के लिए क्या सोचो कि कर्म फल एक उपहार है, जो मुझे फल मिलेगा वो एक उपहार के रूप में है, जो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए शिक्षा देता है, और वो तब तक शिक्षा देता रहेगा जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। तो 10 साल के बाद उससे शिक्षा लो, उसकी बजाय आज ही ले लो ना, आज ही बदल जाओ ना, कि 10 साल के बाद बदलेंगे। कई बार हम जब ये शिक्षा देते हैं तो कहते हैं ये बच्चों को क्यों देते, तो जब बूढ़े होंगे ना तभी ये बातें सोचेंगे। अब सोचते हो बूढ़े होकर के बदलेंगे? बुढ़ापे में बदल सकते हैं? बुढ़ापे में तो वो संस्कार इतने जड़ हो जाते हैं, इतने अकड़ जाते हैं, जैसे शरीर अकड़ जाता है ना, वैसे संस्कार भी अकड़े हुए रहते हैं, कभी नहीं बदलेगा। जैसे धागे को तोड़ना सहज है, मोटे रस्से को तोड़ के तो दिखाओ, ऐसे ही तोड़ सकेंगे? तो जैसे छोटी आयु में संस्कार अगर अच्छे मिलते हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छा आगे बढ़ करके संस्कारी बन सकता है। और कोई कहे नहीं नहीं नहीं, तो अभी छोटी उम्र है, अभी थोड़ी ये बातें उनको सिखानी होती है, जब बूढ़े होंगे तभी सीखेंगे। योग के लिए भी हम यही कहते, कई कहते ये योग तो बूढ़ों के लिए है, वो सन्यासियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। लेकिन योग तो जीवन जीने की कला सिखाता है, सबके लिए है। और बचपन में अगर सीखे तो जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाए। तो इसीलिए कर्म फल को एक उपहार समझो। इसलिए जो कल करना सो कब करो? आज करो। और जो आज करना वो अभी करो। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। कहते जो आज करना सो अब पल में प्रलय होगी, फिर करोगे कब? अभी प्रलय हो जाए, अभी शरीर छूट जाए तो कब करेंगे? पूरा हुआ, खत्म, खेल खत्म। इसीलिए दूसरे आपसे कैसा भी व्यवहार करें वो उनका कर्म है, पर आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो ये आपका कर्म बन जाएगा। इसलिए दूसरे को कभी दोष न दो, इसने ऐसे किया ना इसलिए मैंने किया। हम लोग अक्सर करके ये खेल करते हैं, बचपन से ही ये खेल हमारा शुरू होता है। हाँ, कई बार है ना, बच्चा रो रो करके मम्मी के पास आता है, मम्मी इसने मुझे मारा। अब मम्मी तो मोह के वश है, तो बच्चे की बात सुन करके वो जाएगी बच्चे के पास, तुमने मेरे बच्चे को मारा? वो बच्चा कहेगा पर आंटी इसने मुझे पहले मारा। अभी बच्चा वो अपनी भूल नहीं बताएगा कि मम्मी मैंने उसको मारा, तो वो क्या बताएगा? उसने मारा, मैंने मारा तब उसने मारा, ये नहीं कहेगा, उसकी भूल बताएगा, अपनी भूल नहीं बताएगा। तो वो कहेगा मम्मी आंटी इसने पहले मुझे मारा। अब बच्चे को कहेंगे बेटा तुमने उसको पहले मारा? हाँ मारूंगा। अब मारूंगा तो लड़ो। लेकिन बच्चे को ऐसे भी वास्तव में कहना नहीं चाहिए। हाँ? क्यों? बच्चे को भी अच्छी शिक्षा अगर आप देंगे ना, कई बार माताएं खुद ही कहती तुम भी जाके मारो उसको, तुम भी जाके मारो, तो तुम भी जाके मारो, माँ ने शिक्षा दे दी। झूठ बोलना सिखाना माँ बाप ही करते हैं। बच्चा तो सच्चा होता है। कैसे सच्चा होता है? हम कई बार वो दिखाते हैं का एक पिक्चर में, बच्चे ने फोन उठाया, अब फोन डैडी के लिए, पिताजी के लिए, तो वो व्यक्ति फोन पर कहता है पिताजी कहाँ है, पिताजी को बुलाओ या पिताजी को दो। तो डैडी 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 करके वो जाता है फोन लेकर के। अभी डैडी पूछता कौन है, तो पिता आप कौन है, तो क्या फलाना हो, तो क्या डैडी कहता है उसको बोलो पिताजी घर में नहीं है, बात नहीं करनी है पिताजी को। तो बच्चा तो बड़ा सच्चा, डैडी कहते मैं घर में नहीं हूँ पिताजी कहते घर में नहीं हूँ। अब वो व्यक्ति समझ नहीं जाता है क्या, उसने तो सच बताया, जो पिता ने कहा उसने बोल दिया। वो सच्चे होते तो झूठ बोलना सिखाता कौन है, कौन सिखाता है, माँ बाप ही सिखाते हैं। अभी फिर बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं तो माँ बाप दुखी होते हैं, मेरा बच्चा झूठ बोलना सिखाया किसने। दूसरे को दोष देना भी माँ बाप ही सिखाते हैं। कैसे, बच्चा मानो चलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, और अभी चल रहा है, माँ उसको चला रही है, पैर हिला रही है, चल रहा है, और चलते चलते गिर गया। मान लो अभी चलना आता नहीं है, छोटा बच्चा है, अब गिर गया तो रोने लगा। अभी माँ सोचेगी भी रो रहा है, अब उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बच्चे को क्या कहेगी, नहीं बेटा ये धरती ना गंदी है, ये धरती बुरी है, ये धरती टेढ़ी है, देखो मेरे बच्चे को तुम धरती तुमने गिरा दिया, मेरे बच्चे को गिरा दिया। अब बच्चा तो खुश हो गया, मेरा दोष थोड़ी है, किसका दोष था, धरती का दोष, माँ ही का धरती का दोष है। अब बच्चे ने सीख लिया कि मेरा दोष कभी नहीं होता है, दोष दूसरे का होता है। तो ऐसे भी नहीं बच्चे को कहना है कि बेटा तुम्हारा दोष है, लेकिन बच्चे को क्या सिखाना होता है, कोई नहीं बेटा कोई नहीं, ये तो होता है हाँ बच्चे, थोड़ा और ध्यान से चलो, और ध्यान से, ये नहीं कि धरती का दोष है, दोष है तो वो कब सीखेगा, बच्चा कब सीखेगा। पर बच्चे को ये भी नहीं कहना है कि ऐसे मत करो। मुझे याद है हमारे APJ अब्दुल कलाम आए थे यहाँ, जो राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई, बहुत एक सुंदर जीवन की बात सुनाई। कहा जब मैं छोटा था ना, उसने कहा मेरे जीवन में दो ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे इतनी ऊंची बातें दी जो आज मैं इस स्थान पर हूँ। तो उसने पहली बात तो अपने टीचर की कही, अपना टीचर, उसका प्राइमरी स्कूल का टीचर था, बहुत बड़ा, अभी प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या होगा, लेकिन इतना उससे पाया उसने, जो कहा मैं कभी उसकी शिक्षाओं को भूल नहीं सकता हूँ। और दूसरा उसका पिता, तो पिता की बात उसने क्या बताई कि वो और उसकी एक कजिन थी, उसकी मौसी की बेटी थी, या मतलब कजिन थी। तो दोनों बच्चे थे छोटे, खेल रहे थे, एक पेड़ था और पेड़ की टाली को पकड़ करके झूल रहे थे, छोटे बच्चे झूलते हैं। तो जो उनकी जो कजिन थी उसकी माँ आई और माँ आकर के अरे तुम क्या कर रही हो, गिर जाओगी गिर जाओगी गिर जाओगी कहा, और वो सचमुच गिर गई, गिर जाओगी। तो ये मन को फीड किया, क्या फीड किया, गिर जाओगी गिर जाओगी, गिर गई। और मेरा पिता भी आया और मुझे देखा, बहुत खुश हुआ, और मेरे पिता ने कहा बेटा जोर से पकड़ना, क्योंकि गिर जाओगे ये नहीं कहा। तो जो मन को फीडिंग दी वो फीडिंग मिली, जोर से पकड़ना जोर से पकड़ना। तो जोर से पकड़ा तो मैं नहीं गिरा और वो गिर गई, क्योंकि उसको कहा गिर जाओगी और मुझे कहा जोर से पकड़ना, तो जो मुझे कहा गया उस अनुसार किया, तो मैं तो गिरा नहीं। तो मेरे पिता से मुझे ये शिक्षा मिली। और अगर मेरे पिता की वो शिक्षा उसने बताई कि कई एक ऐसा प्रसंग आया जिसमें मेरे पिता का दोष नहीं था, उनके अंदर जो काम करने वाले थे दोष उनका था, लेकिन मेरे पिता ने उनका दोष न निकाल करके वो दोष खुद पर लिया। इसीलिए जब वो बड़ा हुआ और वो ये नासा में काम करता था, साइंटिस्ट था, तो कोई ऐसी भूल हो गई, भूल तो किसी और की थी लेकिन खुद ने भूल ले ली, तो बात सारी खत्म हो गई। अगर वो दूसरे पर लेता, उसको निकाल देते, ये होता वो होता, न जाने क्या बातें होती। तो कहा मैंने पिता से ये सीखा, कैसे नम्रता भी आनी चाहिए, कैसे प्यार प्रेम होना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट एक दो को देना चाहिए, ये सब मैंने अपने पिता से सीखा। तो बच्चे से तो बच्चे ही तो माँ बाप से सीखते हैं, तो इसीलिए माँ बाप को भी ये जरूर ध्यान रखना होगा कि हम जो करेंगे हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। हम एक घर परिवार में गए थे, हम परिवार में वो बच्चे आपस में खेल रहे थे, वो उसका पकड़ रहा था, उसको मार रहा था, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैंने पूछा, आप क्या खेल रहे हो, कौन सा खेल है ये? तो कहा, मम्मी डैडी का खेल है। समझ गए, मम्मी डैडी का खेल। मैंने कहा, मम्मी डैडी का कौन सा खेल होता है? कहते, मम्मी डैडी का रोज हम खेल देखते हैं और वही हम रिपीट कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। अब उनको खेल ही लगा होगा मम्मी डैडी आपस में जो बहस कर रहे हैं, वो खेल लगा होगा उनको, वो खेल खेल रहे हैं आपस में। तो इसीलिए हाँ, ये भी है कि वो दूसरा वो करे उसकी बात, लेकिन मैं क्या करूं, ये हर एक अपने आप को देखे। अभी कर्मों की गहन गति की समझ हमें क्या मिलती है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की शक्ति हमें प्रदान करती है। अगर हमने कर्मों की गति को समझ लिया और दूसरे को दोष नहीं देंगे, अपने ऊपर रखते हैं, माना हमने कर्म अपने जीवन में वो शक्ति ले ली कि मुझे कैसे अपने कर्म करने हैं, हम दूसरों को दोष देने की बजाय हर परिस्थिति का सामना सहज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैंने हाँ ये मेरी भूल है, अभी जो होगा परिणाम देख लेंगे, डरना तो है नहीं, मैं बदल तो गया हूं। तो जब बदल गया हूं तो देखेंगे कि वो रिजल्ट भी जो सजा एक सूली के समान है, वो कांटे जितनी हो जाएगी क्योंकि बदल गए। इस पर एक हम एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। कहानी क्या है, दो मित्रों की कहानी है। एक व्यक्ति ईमानदार था और दूसरा उसका मित्र बेईमान था, पर दोनों दोस्त थे। तो एक तो रास्ते पर जा रहे थे और रास्ते पर जब जा रहे थे तो जो बेईमान था उसकी नजर कोई चीज गिरी हुई पड़ी थी उस पर गई, तो जैसे उठाई तो वो खोला तो उसमें तो बहुत पैसे निकले, बहुत रुपए पड़े थे, किसी की पर्स गिर गई होगी। तो वो उठाई और खोला तो देखा इसमें तो बहुत रुपए पड़े हैं। तो उसने आसपास देखा, कोई नहीं है तो जेब में रख दिया, कोई बात नहीं, कोई है ही नहीं तो ये तो मेरा होगा। तो ईमानदार व्यक्ति ने देखा उसको, कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, अपने जेब में रख दिया, पता नहीं किसकी संपत्ति होगी और वो ढूंढ रहा हो, अगर आपने ऐसे रख दिया। तो उसने कहा, क्या कोई बात नहीं, मेरे अच्छे कर्म का फल है, मेरे अच्छे कर्म का मुझे फल मिला, तो पैसा मिला। तो अब थोड़ा आगे गए तो जिसने बड़ी ईमानदारी दिखाई थी उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो बेईमान ने कहा, देखा ईमानदारी का फल, पैर में कांटा। तो बेईमानी का फल बटुआ पैसा और ईमानदारी का फल कांटा। अब ये तो न्याय नहीं है ना, न्याय है, न्याय तो नहीं है। लेकिन जब न्याय की बात आई तो धर्मराज की कचहरी में ये बात गई तो क्या क्या पता चला कि वो जो बेईमान व्यक्ति था वो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दानी था, बड़ा दानी था। और दान का फल ये होता है कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में बहुत दान किया है तो अगले जन्म में वो धनवान के घर में जन्म लेगा। बच्चा पैदा होते ही लखपति बन गया। किस आधार पर लखपति बन गया? पिता करोड़पति है तो बच्चा पैदा हुआ 1,00,000 बैंक में उसके नाम पर डाल दिया, तो जन्म लिया लखपति बन गया। क्या कर्म किया? कर्म तो कुछ नहीं किया, उस अभी तो पैदा ही हुआ है, लेकिन ये पूर्व जन्म का पुण्य का खाता वो आत्मा लेकर आई है और धनवान घर में जन्मी और लखपति बन गई। तो वो व्यक्ति जिसने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया था उसको इस जन्म में बहुत धनवान घर में जन्म लेना था, लेकिन क्या किया उसने, दान तो बहुत करता था लेकिन अभिमान भी बहुत चढ़ गया। अभिमान इतना, जो बात मत पूछो, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और परिणाम स्वरूप दान का नाम करने के लिए बेईमानी करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। दान करना है, समझा दान करूंगा वो पाप मिट जाएगा, लेकिन पाप का तो खाता बढ़ता गया, दान तो बहुत कम हो गया। अब पाप का खाता बढ़ा तो अब जब जन्म लिया दूसरा तो जो उसने दान किया था वो ही उसको पुण्य के रूप में मिला, लेकिन कितना मिला? क्योंकि पाप तो ज्यादा किया ना, तो वो पुण्य जो एक करोड़पति के घर में जन्म लेना चाहिए था वो एक साधारण घर में जन्म लिया, और पुण्य कितना मिला? कितना मिला होगा बटुए में? कितने होंगे, कितने पैसे होंगे? चलो 1,000, 2,000, 5,000, कितना? कुछ भी नहीं। अब वो जो ईमानदार व्यक्ति था वो पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा खूनी था, उसने बहुत खून किए थे, लेकिन खून करने के बाद वो पकड़ा नहीं गया था, हमेशा छूटता रहा। लेकिन कैसे उसके जीवन में कोई ऐसे संत आया जिसने उसके जीवन में इतना परिवर्तन लाया जो वो बिल्कुल बदल गया, और उसने जो अच्छी पुण्य कर्म किए और वो भी उसके साथ थे, और जो पाप किया था वो भी उसके साथ था, लेकिन जो पुण्य हावी हुए पाप पर, तो जितना सूली जितनी उसको सजा मिलनी चाहिए थी वो कितनी हो गई? हाँ, बस कांटे समान, नहीं तो सूली समान उसको फांसी मिलनी चाहिए थी, सजा ये होनी चाहिए थी, या उम्र कैद मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन का बदला जीवन, लेकिन पकड़ा ही नहीं गया। तो कैसे इस जन्म में साधारण अच्छे घर में जन्म लिया, पर ईमानदारी उसके साथ थी, वो अंतिम संस्कार जो उनके साथ थे वही आए, और वो बेईमान के संस्कार जो उसके अंत के संस्कार थे वो साथ आए। तो कोई कहे कि ये न्याय कैसे कि बेईमान को तो पैसे मिले और ईमानदार को कांटा मिला, पर आप सोचिए ये न्याय है या अन्याय है? अगर ईमानदार को कांटा मिला ये न्याय है या अन्याय है? ये पूरा न्याय है, नहीं तो उनको तो सूली पर चढ़ना चाहिए था। समझा आपने? हाँ, तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हम दूसरों को दोष देने के बजाय हर परिस्थिति का सामना करें और केवल दुखी मत हो जाएं। फिर कई कहते कर्म का संन्यास करें, हम कहते कर्म का संन्यास भी नहीं हो सकता है, सिर्फ क्या हो सकता है, कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, परिवर्तन करके। इसीलिए कल करना वो आज कर, आज करना सो अभी। अब कितने प्रकार की, पहले वृत्ति को चेंज करना होगा, हमारी सोच को, हमारी वृत्ति को, तब कर्म में परिवर्तन आएगा। तो कौन सी प्रकार की वृत्तियां हैं? चार प्रकार की वृत्तियां हैं। कैसे इनको आप बदलेंगे? सोच को बदल करके। वो चार वृत्तियां कौन सी है? एक है दानवी वृत्ति, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। तो छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, हेरा फेरी, झूठ, न जाने क्या क्या धंधे करके किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जब्त करना, ये दानवी वृत्ति है, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और साधारण मानवीय वृत्ति क्या है? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, तुम अपना रखो मैं अपना रखूंगा, मैं तुमको अपना नहीं दूंगा, तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए, भाई भाई के बीच में पार्टीशन, मैं मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, तुमको मैं नहीं दूंगा, ये साधारण मानवीय वृत्ति है। पर दैवी वृत्ति कौन सी है? जो मेरा है वो हम सबका है, सब मिल के खाएं, बांट के खाएं, ये दैवी वृत्ति है। दैवी माना देवता, देने वाला, दाता, और जितना देते हैं भंडारा भरपूर हो जाता है। कहते शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। और योगी की वृत्ति तो और भी ऊंची है, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब किसका? किसका? ईश्वर का, ये उनका है, मेरा नहीं है। आरती में आप लोग क्या गाते हो? ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो आरती तक सब कुछ भगवान का, और बाकी समय है? बाकी सब समय तेरा भी मेरा, मेरे हाथ में लगा कुछ गया, हे भगवान आपने मेरा क्यों ले लिया, था किसका? आपका था या उनका था? लेकिन हम कहते हैं ना, भगवान आपने मेरा ये ले लिया, भगवान आप कितने अन्याय कर रहे हो, आप कितने क्या क्या शब्द यूज करते ईश्वर के लिए, पर किसका था, मेरा तो था ही नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं जैसी फिर वृत्ति होगी वैसे ही फिर कर्म होते हैं। दुनिया में दो प्रकार के कर्मों को जानते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। भगवान ने चार प्रकार के कर्म बताए हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म और अकर्म। अब पाप की परिभाषा क्या है? कई कहते हैं मैंने तो कोई पाप किया नहीं, लेकिन अगर कोई भी कर्म देह अभिमान में आकर के किया वो पाप के खाते में जाएगा, क्योंकि देह अभिमान के वश जो भी कर्म किया वो नकारात्मक सोच के आधार पर ही किया होगा। तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, ये सारे जो कर्म है ये पाप के खाते में जाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ है देह अभिमान। और देह अभिमान माना मैं। सुबह से लेकर रात्रि तक कितनी बार ये शब्द हम अभिमान के वश बोलते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो सब पाप के खाते में जाता है। और दूसरा शब्द हम बोलते हैं मेरा, वो मोह के वश होकर के हम बोलते हैं। तो ये मैं और मेरा ये दोनों पाप के दरवाजे हैं। तो पाप की परिभाषा क्या है? बहुत सुंदर कहा गया है, हाँ, पाप की परिभाषा क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो पाप की जड़ क्या है? पाप की जड़ क्या है? अभिमान। और कितना अभिमान आज इंसान को है। तो कितने पाप कर रहे होंगे हम सभी, फिर कहते क्या करें, हाँ मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूं। कदम कदम पर पाप हो रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या मिलता है? तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, यानी धन की कमी, होते हुए भी धन से सुख नहीं है, और संबंधों में अनबन, ये सब पाप कर्मों का परिणाम है। और वो कहां से आए? मैं और मेरा इसके आधार पर हुए। और फिर दूसरा पुण्य कर्म। पुण्य कर्म हम किसको कहते हैं? कोई भी प्रकार का दान हम करते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, रक्त दान, नेत्र दान, भू दान, ये दान, स्थूल चीजों का दान जो समाज सेवी संस्थाएं करती है वो पुण्य कर्म बनता है, और उसका रिटर्न हमें मिलता है। धन दान करेंगे तो धनवान के घर जन्म लेंगे, हॉस्पिटल के लिए दान करते हैं तो थोड़ा तन निरोगी बनेगा, स्कूल कॉलेज खुलवाते हैं तो बुद्धि थोड़ी अच्छी होगी। तो जो कर्म करेंगे, जैसा दान पुण्य दान किया उसी अनुसार पुण्य बनता है। अब इसका बहुत विस्तार है कि पुण्य भी तब बने जब पहले अभिमान के वश न करें। अगर अभिमान के वश किया, मैंने किया, तो वो पुण्य कम हो जाता है। और दूसरा पुण्य तब बने जब जरूरतमंदों को करे, अपने नाम मान शान के लिए न करे। कल मेरा फोटो आएगा अखबार में इसलिए मैं दान कर रहा हूं, इस लक्ष्य से न करे। गुप्त दान का बड़ा महत्व है, दायां हाथ आपका दान करे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान महाकल्याण। तो नाम मान शान के लिए भी नहीं करना है, और जरूरतमंदों को देने के लिए ही करना है। ये नहीं कि उनको चाहिए नहीं और मैं ये अपना नाम मान शान कर रहा हूं। इसीलिए तब ही वो पुण्य बनता है। और श्रेष्ठ कर्म तो परमात्मा हमें सिखाते हैं। कौन सा श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है? जो भी कर्म हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की स्मृति में करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्यों दिया जाता है यहां? ताकि हमारे कर्म श्रेष्ठ बने। तो आत्मिक स्थिति में मैं वो कर्म करूं, परमात्मा की याद में वो कर्म करूं और फल ईश्वर को दे दूं, वो श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। और इतना उसका फल ऊंचा होगा जो मानव देव बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी। पर वो कब होगा? जब चरित्र रूपी धरनी हो, ऐसे बंजर धरनी नहीं, चरित्र रूपी धरनी हो, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज हो, संयम नियम रूपी खाद हो, अच्छे संस्कार रूपी वातावरण हो, अच्छा माहौल रूपी वायु हो, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी धूप हो, परमात्म याद रूपी जल हो, विकारों रूपी जीवों से सुरक्षा हो, फिर धीरज रूपी इंतजार करो और संतुष्टता एवं प्रसन्नता रूपी फल इस जन्म में खाओ और भविष्य 21 जन्मों तक मनुष्य से देवता बन जाओ। तैयार हो इसके लिए? तैयार हो? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? श्रेष्ठ कर्मों को करना पड़ेगा। जो कहा, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो इसीलिए तब बनेंगे मनुष्य से देवता जब अभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे। और श्रेष्ठ कर्म करके जो हमारे पाप कर्म हैं उनको खत्म करना है। वो कैसे खत्म करेंगे? परमात्मा की याद में। तो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करो, पाप कर्मों का जो घाटा है वो ईश्वर की याद से खत्म करो, तो ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और भविष्य उस सत्युगी दुनिया में मानव से देव बनेंगे। कई कहते हैं कि मनुष्य को अगर पाप कर्म करता है तो उसको दूसरी योनि मिलती है। भगवान कहते नहीं, मनुष्य आत्मा को मनुष्य योनि ही मिलती है, मनुष्य चोला ही मिलता है। आम का बीज से आम का ही पेड़ आएगा, आम का ही फल मिलेगा। तो मनुष्य आत्मा के अंदर मनुष्य के संस्कार है, वो दूसरी योनि में कैसे पाएगा? तो कई कहते हैं वो तो भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि। हम कहते ये भी गलत, मनुष्य योनि कर्म योनि भी और भोग योनि भी है, दोनों। कर्मों की गति जानवरों के साथ नहीं लगती है, जानवरों का हिसाब किताब मनुष्यों के आधार पर है। मनुष्य अगर श्रेष्ठ कर्म करते तो जानवरों को भी इतना ही सुख अनुभव होता है। कई जानवर तो मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं, क्या बढ़िया खाना खाते हैं, कितना बढ़िया उनको सोने को मिलता है, और कोई तो बेचारे फटकते रहते रास्ते पर, गंद खाते किचरा खाते। तो है तो कर्मों की गति इंसान की, जिस कारण जानवरों की भी हालत है। और अगर मनुष्य श्रेष्ठ बन जाए, सब प्रकृति भी इतनी सुंदर बन जाएगी और वही सत्युग देवता बन जाएंगे। तो और तीसरे प्रकार के कर्म अकर्म। अकर्म की परिभाषा क्या है? जो इस संगम पर हम सत्कर्म करते हैं वो सत्युग में फल पाते हैं, और वहां फल जो पा रहे हैं उसमें भी कर्म होते हैं। बीज बोना भी कर्म है, फल खाना भी कर्म है। तो सत्युग देवता में वो फल खाने का कर्म कर रहे हैं, बोने का आगे कर्म नहीं कर रहे हैं। एक होता है बैंक में डिपॉजिट करना, दूसरा होता है बैंक में जा करके विड्रॉ करना, धन पैसा लाना जो हमने डिपॉजिट किया है। तो संगम पर हमको डिपॉजिट करना है और पुराना कर्जा 63 जन्मों का खत्म करना है, और इतना डिपॉजिट करे जो सत्युग त्रेता में 2 युग तक खाते रहे खाते रहे खाते रहे। और वहां जो कर्म होंगे वो खाने के कर्म होंगे। तो धीरे धीरे विड्रॉल होता जाता है, धीरे धीरे खाता कम होता जाएगा, और 2 युग तक वो खाता चलता है। और उसके बाद फिर कैसे मनुष्य से देवता बने? फिर देवताएं कहाँ चले गए? सत्युग त्रेता तक तो देवता थे, फिर द्वापुर आते ही 2 पुर हुए, माना आत्मा खुद को भूल गई, दे अभिमान में आ गई, सत्कर्मों की पूंजी समाप्त हो गई, और मनुष्य रूप में पाप और पुण्य ये 2 कर्म ही रह गए। अकर्म भी खत्म हो गए, सत्कर्म भी खत्म हो गए, और द्वापुर से पाप कर्म करने लगे विकारों के वश, और कुछ दान पुण्य स्थूल चीजों का करने लगे, वो पुण्य बनते गए। और कलयुग अंत में आते आते जो नाम का भी कुछ पुण्य कर्म करते थे ना, वो भी पाप के खाते में जा रहा है। क्यों? अभिमान के वश कर रहे हैं। और जो कमाई है वो भी पाप की कमाई, पुण्य की तो बहुत ही कम कमाई है, मेहनत की तो बहुत कम कमाई है, तो परिणाम स्वरूप पुण्य तो बनते ही नहीं है। और इतना हमारे सिर पर अभी पापों का बोझा है जो ये सब यहां चुकतू करके जाना है। कर्जा साथ में नहीं ले जा सकते हैं, पाप कर्म यहां ही चुकतू करने हैं, क्योंकि परमधाम जाने से पहले धर्मराज की सजाएं खा करके जाएंगे अगर पाप कर्म साथ में होंगे तो। जैसे कोई विदेश से आता है ना, अगर साथ में कोई इलीगल चीजें लाया, हशीश और गांजा और ये सब अफीम ये सब लाता है, तो कस्टम्स में क्या होता है, पकड़ा जाता है। केवल पकड़ा ही नहीं जाता, उसकी चीज तो छीन ली जाती है, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ उसको कितना जुर्माना भरना पड़ता है, साथ साथ उसको जेल भी भोगना पड़ता है, और उसके साथ अगर बाहर निकला भी जेल से, नाम कितना बदनाम। तो चीज भी गई, जुर्माना भी भरा, जेल भी काटा और नाम भी बदनाम। खाली वो हशीश और गांजा जो गैर कानूनी चीजें हैं वो देश में लेकर आया। अब परम धाम जाना है तो ये जो पाप कर्मों की गठरी है साथ नहीं चलेगी, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ छिपा के ले जाएंगे कस्टम्स में। चलो फिर भी कोई छिपा के ले जाए, पता न चले, पर ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो क्या करना होगा, 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करना होगा। तो कैसे करेंगे भस्म, परमात्मा की याद से। इस राजयोग को आपको सीखना होगा सेवा केंद्रों पर जाकर के, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य हैं कि मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, आगे कोई पाप कर्म नहीं करना है, कोई विकार के वश पाप कर्म नहीं करना है। और तीसरा, आगे भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है, अपने तन से मन से धन से सेवा करनी है, ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना है। तो क्या करना होगा, क्या करेंगे? और अगर पाप कर्म नहीं करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, तो भगवान के द्वार पर आप आए हो तो पहले तो भगवान के आगे अपने सब जो भी किया हुआ है ना, वो सब की क्षमा ले लो। हाँ, भगवान बाबा के कमरे में जाकर के क्षमा ले लो, और फिर प्रतिज्ञा करो। करेंगे कुछ प्रतिज्ञाएं? क्या प्रतिज्ञा करेंगे? भगवान के द्वार पर आए हो, तीर्थ स्थान पर आए हो, कुछ दान करके जाना होगा। तैयार है दान करने के लिए? तीर्थों पर जाते दान करते हैं ना, तो यहाँ कौन सा दान करेंगे? 5 खोटे पैसों का दान करना है। कौन से खोटे पैसे? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि ये 5 विकारों ने ही हमारे पापों के पाप कर्म का बोझा बढ़ाया है। अब इसको भगवान के द्वार पर दान करके जाओ। ये बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में भगवान ये आहुति चाहते हैं। और क्या लेके जाओ? एक वायदा करके जाओ। हम कहते 5 खोटे पैसे देके जाओ और एक आना लेकर जाओ। कौन सा एक आना लेकर जाओ? एक बार रोज केंद्र पर जाना, वो आना, वहां आना, ये करके जाओ। अब जो ये करना चाहते हैं करेंगे, वो हाथ उठाएं। अभी दादी जी आएंगे, हाँ, तो दादी जी आपसे हिसाब लेंगी, हिसाब लेंगी। दादी को देंगे हिसाब कि नहीं? देंगे ना, हाँ? दादी आपसे हाथ उठवाएगी जरूर। देखो क्या दादी करते हैं। फिर दादी के आगे बताना कि दादी मैं ये करने जा रहा हूँ, देखो खास आपसे मिलने के लिए दादी ने कहा मैं आऊंगी। तो कर्म फल को परमात्मा को समर्पित कर दो और जीवन में शांति और शक्ति की अनुभूति करो। और उसके लिए क्या करो, छोड़ो तो छूटो। जो अनेकों के साथ हिसाब किताब जो भी है ना, उस पर दुखी मत हो जाओ, छोड़ो तो छूटो। एक डाली को पकड़ करके अगर पंछी बैठा है, वो उड़ नहीं सकता है, पंख है लेकिन वो अपने आप को ही बांध के रखा है। तो छोड़ो तो छूटो, बातों को पकड़ कर न रखो, क्षमा करो और भूल जाओ। छोड़ो तो छूटो और उड़ते पंछी बन जाओ। क्षमा भी करना सीखो और भूलना भी सीखो, और क्षमा लेना भी सीखो, देना भी सीखो और लेना भी सीखो। क्योंकि हमने भी बहुत भूले की होगी तो हमें भी क्षमा लेनी होगी और देनी भी होगी दूसरों को, जिन्होंने कुछ गलतियां की है। तो भगवान पर छोड़ दो, अपना बोझ अपने सिर पर मत रखो, ईश्वर को दे दो। गाते तो है ना, इस सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में। तो सचमुच ये दिल के उद्गार है या केवल मुख से कहते हैं कि भगवान तेरे ऊपर ये भार छोड़ दिया। तो भगवान को दे दो और उड़ता पंछी बनो, और क्या सोचो कि मैं इस संसार में क्यों आया, मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता के रूप में आई और मुझे हर अभिनय अच्छे से अच्छा करना है, और उस अच्छे से अच्छे अभिनय में मुझे औरों को शांति सुख जिसका मैं स्वरूप हूँ वो दूसरों को मन वचन कर्म से बांटना है, ये दूसरों को देना है, और तीसरा परमात्मा का मुझे नाम रोशन करना है। तो क्या होगा, जिस परमात्मा ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा, मेरे कर्म वो हो, वचन वो हो, संकल्प वो हो जिससे मेरे पिता परमात्मा का नाम रोशन हो। अब उसके लिए आप तैयार हो, जो समझते हाँ हम तैयार है तो हाथ उठाओ, हा? अच्छी बात है, अब अपने लिए ताली बजा दो, अपने लिए, ठीक है। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। अवश्य अपने जीवन में कुछ संकल्प किए होंगे और भी करना, या ताकि यहाँ से आप जाएं तो बदल कर जाएं, वही रूप न ले जाएं। जीवन में कुछ प्रतिज्ञाएं करके जाएं, कुछ छोड़ के जाएं, कुछ परिवर्तन करके जाएं, तब ये जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। और ये जन्म तो सफल होगा ही, लेकिन जन्म जन्म को सफल करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।